लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमने अपने जीवन में निश्चित रूप में कभी न कभी खेती बारी या छोटी मोटी बागवानी की है। अतः अपने मन चाहे पौधों को रोपने के पहले हमने अपने खेतों या क्यारियों को तैयार किया है। हमने जमीन की मिट्टी खोदे, अनचाहे ढेलों को फोड़ा और अनचाही जंगली घासों को हटाते हुए जमीन तैयार किया है। हमने जमीन की मिट्टी को नरम बनाने हेतु पानी पटाई और केवल एक बार नहीं वरन क्यारियों को कई बार खोदा होगा। इस भांति मिट्टी के नरम और तैयार होने पर हमने उस स्थान पर मन चाहे पौधों को रोपा। वहीं हमने उबड़ खाबड़ पथरीली और कंटीली झाड़ियों के मध्य खेती बारी और अपने मन चाहे पौधों को कभी नहीं रोपा है। श्रोताओ, 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का संदर्भ हमारे लिए नम्रता का संदेश लाते हैं। नम्रता हमारे लिए वह ईश्वरीय गुण है जो हमें सीधे तौर से ईश्वर से संयुक्त करता है। आइए हम आज के सुसमाचार में ईश वचनों का श्रवण करते हुए अपने मन और हृदय की थाह लें कि ईश्वरीय वचनों को ग्रहण करने हेतु हमारे हृदय रूपी भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है।
उस समय ईसा ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़ कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में यीशु ख्रिस्त की तरह नम्र और दीन बनने में मदद करें, जिससे हम उनके द्वारा मिलने वाली शांति को अपनी आत्मा के लिए प्राप्त कर सकें। श्रोताओ, नबी जकराया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए मुक्तिदाता के आने की बात कहता है, जो एक राजा है। यह राजा अपने प्रभुत्व और शान शौकत का दिखावा नहीं करते, बल्कि अपनी नम्रता और दीनता में गधे और लद्दू जानवर की सवारी करते हुए यरूशलेम अपने लोगों के पास आते हैं। पहला पाठ हमारे लिए यीशु का केवल यरूशलेम प्रवेश करने की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं कराता, वरन हमें यीशु ख्रिस्त का अति साधारण रूप में दुनिया में आने की बात कहता है। वे गरीबों के गौशाले में उस अत्यंत गरीब और दरिद्रता की स्थिति में आए जहां उन्हें सिर रखने को जगह नहीं मिली। उन्होंने महलुंग और सारायुंग में जगह की मांग की, लेकिन उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। शायद धनी होने पर उन्हें कोई पूछता, लेकिन अपने माता पिता की गरीब परिस्थिति के कारण उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्हें लद्दू जानवरों के आश्रय में शरण लेनी पड़ी। नबी जकराया दुनिया के राजा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, वे न्यायी और विजयी राजा हैं, वे विनम्र हैं, वे राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। श्रोताओ, यीशु ख्रिस्त से मिलने वाली शांति को हम उनके दुनिया में आने रात्रि के सुनसान में पाते हैं। उनकी उस अद्भुत शांति को बेतलहम के गरीब चरवाहों ने सर्वप्रथम अनुभव किया। उनकी मृत्यु और दुख भोग की घड़ी भी वही शांति व्याप्त रही जो उनके जन्म के समय थी। चारों ओर अंधेरा छाया रहा और वहीं अपने पुनरुत्थान के बाद तथा अपने शिष्यों से विदाई की घड़ी यीशु ने उसी अभूतपूर्व शांति को हम सबों के लिए प्रदान किया जो दुनिया की शांति से एकदम भिन्न है। श्रोताओ, यह शांति हमें ईश्वरीय आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है जिसे उन्होंने अपने चेलों को प्रदान किया है। इस शांति देने वाले आत्मा का जिक्र आज का दूसरा पाठ हमारे लिए करता है जो रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। ईश्वर का आत्मा जिनमें निवास करता है वे शांति में बने रहते हैं। मानवीय जीवन में व्याप्त अशांति का एक मुख्य कारण शरीर की वासना है जिसकी तृप्ति हेतु मानव अपने में सदा बेचैन रहता है। वासना मानव के अंदर वह शारीरिक सुख की चाह है जो सदैव क्षणिक होती है, जिसकी तृप्ति हेतु मानव व्याकुल रहता है। इस भांति यदि देखा जाए तो हमारे जीवन के कार्य बहुधा वासना के द्वारा संचालित होते हैं। हम सुख और आनंद की प्राप्ति हेतु अपने कार्यों को करते हैं जिसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत ख्याति, प्रशंसा, पहचान पाना, अपने को दिखाने या साबित करने की चाह या कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि इत्यादि। वहीं यदि हम ईश्वरीय आत्मा जो हमारे हृदय में निवास करते हैं उनकी बातों को सुनते और अपने को उनके द्वारा संचालित होने देते हैं तो यह न केवल हमारे नश्वर शरीर को जीवन देता वरन हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य दूसरों के लिए सच्चे अर्थ में जीवन के स्रोत बनते हैं। श्रोताओ, आज भी समाज में बहुत से लोग हैं जो सभी सुख सुविधाओं के बावजूद जीवन में एक खालीपन का अनुभव करते हैं। यह खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर खोखलेपन का एहसास दिलाती है जो उनमें अशांति और बेचैनी लाती है। अपने इस खालीपन को भरने हेतु वे क्या क्या नहीं करते हैं, यह उनके लिए जीते जी एक तरह से मरण की अनुभूति होती है क्योंकि वे अपने में चैन का अनुभव नहीं करते हैं। अतः संत पौलुस हमें आत्मा की प्रेरणा से अपने शरीर की वासनाओं अर्थात इच्छाओं का दमन करने को कहते हैं। यदि हम ऐसा करते तो यह हम में जीवन का स्रोत बनता है।
मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले, तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें।
श्रोताओ, आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त अपने पिता की महिमा और प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के इस महत्वपूर्ण रहस्य को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर दीनहीन और अति साधारण लोगों के लिए प्रकट किया है। जीवन की खुशी हमारे लिए बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं के समाधान और निराकरण में नहीं मिलती वरन रोज दिन के छोटे छोटे दिनचर्या कार्यों और बातों में मिलती है जिसे कई बार ज्ञानी और समझदार नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वे बड़े रहस्यों के निदान में लगे रहते हैं। अपने को विद्वान और ज्ञानी समझने वालों में हम बहुधा दीनता और नम्रता की कमी पाते हैं जो यीशु ख्रिस्त के मनोभावों से एकदम भिन्न है क्योंकि उनकी विद्वता उनके लिए घमंड का कारण बनती है। यीशु ख्रिस्त जो दीनहीन और नम्र बनकर इस धरती पर हमारे लिए आए हमें अपने पास बुलाते हैं। उनके पास आने का अर्थ हमें अपने में उनके मनोभावों को धारण करना है। हम केवल उनके मनोभावों को अपने में आलिंगन करते हुए ही अपने जीवन में अपनी आत्मा हेतु सच्ची शांति को प्राप्त करेंगे। आइए हम शांति के दाता पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपने जीवन के इस रहस्य को जानने और समझने की शक्ति प्रदान करें कि जीवन में नम्र और दीन बनने के द्वारा हम कुछ खोते नहीं वरन उस परम शांति का रसा स्वादन करते हैं जिसके लिए हमारी अंतरात्मा सदैव तरसती रहती है।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कोविड-19 संकट का सामना करने का समर्थन करते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम को अनुदान प्रदान किया। संत पापा ने कोविड-19 संकट के बीच कई प्रकार से अपने सामीप्य के भाव को प्रकट किए हैं। सामीप्य के इन्हीं रूपों में से एक है कि उन्होंने विश्व खाद्य कार्यक्रम को अनुदान दिया है। संत पापा द्वारा दान किए जाने की घोषणा शुक्रवार को समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद द्वारा किया गया। कहा गया कि यह संत पापा का महामारी से पीड़ित लोगों एवं गरीबों की आवश्यक सेवा में संलग्न लोगों के प्रति तत्काल सामीप्य की अभिव्यक्ति है। संत पापा ने यह दान परिषद के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए परमधम पीठ के स्थायी प्रतिनिधि, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से किया है। यह अनुदान विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं अन्य देशों के प्रति प्रोत्साहन का पैतृक भाव है जो सामाजिक अस्थिरता, खाद्य असुरक्षा, बढ़ती बेरोजगारी और कमजोर राष्ट्रों की आर्थिक प्रणाली के पतन का मुकाबला कर रहे लोगों को अभिन्न विकास हेतु सहायता प्रदान करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कोरोना वायरस के संकट काल में लगातार मदद की है। उन्होंने विगत तीनों महामारी से सबसे अधिक पीड़ित देशों को 35 वेंटिलेटर प्रदान किए हैं और करीब 2 मिलियन यूरो दान किए हैं। उधर मुंबई के महादमदश कार्डिनल ओसवाल्ड क्रेसिस ने भारत के प्रेरित संत थॉमस के पर्व दिवस पर 3 जुलाई को समारोही ख्रिस्त्याग अर्पित किया जिसको लाइव प्रसारित किया गया। 3 जुलाई की प्रातः ख्रिस्त्याग आरंभ करते हुए कार्डिनल ने सभी को प्रेरित संत थॉमस के पर्व की शुभकामनाएं दी जिन्होंने 1752 में आज से लगभग 1978 साल पहले भारत में पहली बार येसु को लाया था। उन्होंने कहा, हम प्रार्थना करते हैं कि संत थॉमस हमारे विश्वास को सुदृढ़ करें। आज भारत की कलीसिया के लिए एक बड़ा पर्व है। संत थॉमस ने 1752 में विश्वास को भारत लाया। हमारे लिए यह एक बड़ा सौभाग्य है कि प्रेरितों में से एक भारत आए। यह ईश्वर प्रदत्त सौभाग्य है। हमने उन्हें अपना प्रत्युत्तर दिया है। एक समर्पित व्यक्ति के रूप में एवं ख्रिस्त की ओर हमारे स्वर्गीय पिता की ओर बढ़ रहे हैं। कार्डिनल ने कहा कि हमें अपने विश्वास को अच्छी तरह समझना है जिसके लिए हमें ईश वचन का पाठ करना, प्रेरितों के धर्मसार को समझना, प्रार्थना करना एवं चिंतन करना है। संत पापा की धर्म शिक्षा को सुनना एवं संस्कारों को ग्रहण करना है। इन सभी चीजों को करते हुए हम संत थॉमस के समान यीशु का स्पर्श कर सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इस बीच कोलकाता के महाधर्माध्यक्ष ने फेथ चार्ट पहल को प्रोत्साहन दिया है, जिससे कि बच्चों एवं युवाओं को ऑनलाइन धर्म शिक्षा दी जा सके। धर्म प्रांत के फेसबुक में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि इसका निर्माण कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न इस कठिन समय में बच्चों के विश्वास को पोषित करना है। इस पहल से अधिकतर उन बच्चों को फायदा होगा जो प्रथम परम प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, युवा जो दृढ़ीकरण संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, और वे सभी युवा जो इसमें भाग लेना चाहते हैं।
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इटली में गर्मियों के महीनों जुलाई और अगस्त में जब परिवार छुट्टियां बिताने पहाड़ों या समुद्र के किनारे चले जाते हैं और शहरों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, तो अनेक सामाजिक सेवाएं और सहायता परियोजनाएं कई बुजुर्गों का साथ देने की कोशिश करती है। संत पापा फ्रांसिस उन लोगों को नहीं भूलते हैं जो अकेले और जरूरतमंद हैं। उन्होंने रोम के एक उपनगरीय कारविले क्षेत्र के एक पल्ली पुरोहित को टेलीफोन में बात की और पल्ली के बुजुर्गों एवं जरूरतमंदों के प्रति अपनी एकात्मकता दिखाते हुए उन्हें अकेला न छोड़ने हेतु आग्रह किया। कारविले क्षेत्र में स्थित संत पॉल ऑफ द क्रॉस पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर रोबेर्टो कासानो ने बुधवार शाम वाटिकन रेडियो को अपने आश्चर्य और खुशी के बारे में बताया, जब उन्होंने अपने फोन का जवाब देते हुए तुरंत संत पापा फ्रांसिस की आवाज को पहचान लिया। फादर रोबेर्टो ने बताया, जब संत पापा फ्रांसिस ने 12 अप्रैल 2018 को हमारी पल्ली का दौरा किया था, तब मैंने उन्हें हमारे समुदाय के करीब रहने के लिए लाइव स्ट्रीम प्रसारण के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, गर्मियों की छुट्टियों के पहले आखिरी प्रसारण के दौरान संत पापा के फोन की उम्मीद नहीं थी। फादर रोबेर्टो ने कहा कि वह और उनके साथी पुरोहित लाइव स्ट्रीमिंग स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी और फोन करने वाले संत पापा फ्रांसिस की आवाज सुनकर तुरंत उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग से जोड़ दिया ताकि हर कोई उनकी आवाज सुन सके। उन्होंने कहा, यह हम सभी के लिए एक भावुक क्षण था। यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि संत पापा अभी भी 2018 में किए गए दौरे की याद करते हैं। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को भी याद किया जिनके साथ उन्होंने बातें की, जिनके पिता की मृत्यु हाल ही के दिनों में हुई थी। बातचीत के दौरान संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में हम हमारे समुदाय के बुजुर्गों और सबसे कमजोर लोगों को अकेले न छोड़ें। अंत में संत पापा ने अपने लिए भी प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए हमें अपना आशीर्वाद दिया। उधर भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के साथ पंजीकृत 40,276 शरणार्थियों में से ज्यादातर पहले से ही जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उनकी जिंदगी और बिखर गई है। भारत में UNHCR के साथ पंजीकृत शरणार्थियों में से अधिकतर म्यांमार से आते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान और कुछ छोटे समूह में यमन, सीरिया, सोमालिया और अन्य अफ्रीकी देशों से आते हैं। 2013 में म्यांमार से भारत आए रोहिंग्या शरणार्थी 44 वर्षीय निजामुद्दीन अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ नई दिल्ली में एक गैर सरकारी कानूनी सहायता संगठन के लिए अनुवाद का काम करके जीवन यापन कर रहे थे। अब वे पेट भरने के लिए स्थानीय किराना दुकानों में माल लादने और उठाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया, मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।